आकाशवाणी है। अब आप धर्मेंद्र मणि राजेश से समाचार सुनिए। बांग्लादेश में जारी आरक्षण विरोधी प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना की अपने पद से त्यागपत्र की खबरें हैं। श्रीमती हसीना के सेना के हेलीकॉप्टर में देश छोड़ने की भी खबर है। बांग्लादेशी मीडिया के अनुसार ढाका में प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास गणभवन पर सैकड़ों प्रदर्शनकारियों के धावा बोलने के बाद श्रीमती हसीना सुरक्षित स्थान के लिए रवाना हो गई। बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वक्कर उज़्ज़ामा ने टेलीविजन पर राष्ट्र के नाम संबोधन में देशवासियों से धैर्य बनाए रखने और शांति बनाए रखने की अपील की। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कल हुई झड़प में करीब 100 लोग मारे गए और 1000 से अधिक घायल हो गए। प्रदर्शनकारी वर्ष 1971 के गृह युद्ध में पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजादी दिलाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के संबंधों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। इस बीच बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वक्कर उज़्ज़ामा ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि देश में अब एक अंतरिम सरकार का गठन होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 दिन की फिजी यात्रा पर आज नाटी पहुंच गई। फिजी के उप प्रधानमंत्री विलियम गावोका ने उनका स्वागत किया। भारत के किसी राष्ट्रपति की यह पहली फिजी यात्रा है। राष्ट्रपति 7 अगस्त तक फिजी में रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा से दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों को और मजबूती मिलेगी। राष्ट्रपति मुर्मू फिजी के राष्ट्रपति कैटूनी वेरे और प्रधानमंत्री सितिवेनी राबुका के साथ बैठक करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात के देश के शीर्ष 3 निर्यातकों में शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री मोदी ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ एक सोशल मीडिया पोस्ट को साझा करते हुए कहा कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स को देश की युवा शक्ति के नवाचारों से और बल मिल रहा है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि पिछले महीने के अंत तक असंगठित क्षेत्र के 50 लाख से अधिक श्रमिकों ने प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना में पंजीकरण कराया है। यह योजना 18 से 40 वर्ष की आयु के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करती है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोकसभा में बताया कि इलेक्ट्रॉनिक यात्रा प्राधिकरण के साथ ई वीजा सुविधा 30 नामित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और 6 प्रमुख बंदरगाहों के माध्यम से 167 देशों के नागरिकों के लिए उपलब्ध है। एक लिखित उत्तर में श्री शेखावत ने कहा कि जापान, दक्षिण कोरिया और संयुक्त अरब अमीरात के नागरिकों के लिए पर्यटन, व्यवसाय, सम्मेलन और चिकित्सा के लिए आगमन पर वीजा की सुविधा उपलब्ध है। नागर विमानन और गृह मंत्रालय ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय आवागमन को और आसान करने तथा आवर्जन सुविधा को सुरक्षित बनाने के लिए फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम की शुरुआत की है। नागर विमानन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि यह सुविधा विदेशों में रह रहे भारतीयों को उपलब्ध होगी। रक्षा प्रमुख अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान नई दिल्ली में शीर्ष स्तरीय त्रिसेवा वित्तीय सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। सम्मेलन का उद्देश्य सशस्त्र बलों के वित्तीय मुद्दों में सहयोग और तालमेल बढ़ाना है। पेरिस ओलंपिक में आज भारत की महिला टेबल टेनिस टीम ने इतिहास रच दिया। महिला टीम स्पर्धा में पहली बार भाग ले रहे भारत ने रोमानिया को 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। मनिका बत्रा ने अपने दोनों सिंगल्स मैच जीते। श्रीजा अकुला और अर्चना कामत ने डबल्स मैच में जीत हासिल की। निशानेबाजी के मिक्स टीम क्वालिफिकेशन के दूसरे राउंड में महेश्वरी चौहान और अनंत सिंह नरुका ने 50 में से 48 का स्कोर बनाया। भारतीय जोड़ी फिलहाल 97 अंकों के साथ 6 स्थान पर है। बैडमिंटन में लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के कांस्य पदक मुकाबले में मलेशिया के ली जिया जिया के साथ खेलेंगे। विश्व के प्रमुख शेयर बाजारों में पिछले सप्ताह बड़ी गिरावट के बाद आज फिर गिरावट दर्ज की गई। अमेरिका में शुक्रवार को अर्थव्यवस्था में मंदी की आशंका के बाद एशिया के शेयर बाजारों में गिरावट दर्ज की गई। जापान में निक्केई 225 और टॉपिक्स इंडेक्स दोनों दोपहर के कारोबार में 10% से अधिक नीचे थे। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।